संगम युग के इस श्रेष्ठ सुहावने समय में ये स्थान जहां हम सभी बैठे हैं, जिसको हम कह सकेंगे ये ऐसी बेहद की तपस्या भूमि है, जिसको हमारे यज्ञ पिता यज्ञ माता हमारी सर्व दादियों ने पाला है। ठीक है, महसूस हो रहा है? वर्तमान समय जबकि संसार में चारों ओर क्या है, दुख अशांति भय और चिंता तनाव क्या नहीं है, और ऐसे संसार के बीच में बाबा का ये बेहद का स्थान, जिसको हम क्या टाइटल दे सकेंगे बताओ, इस भूमि को क्या टाइटल दे सकते हैं? हाँ, एसलम स्थान, ऊर्जा स्रोत, यस। और जो फील कर रहे हो, जो अभी आप सभी अनुभव कर रहे हो, सेवा कर रहे हो ना, क्या अनुभव हो रहा है, कहाँ है हम? शांति के सागर के पास है। और ये कह सकते हैं कि जादू की नगरी में है, बैठे हैं, ठीक है? ये ऐसी रूहानी जादू की नगरी है जहां आने के बाद कुछ पता ही नहीं चलता है, ठीक है, कि हम कोई वो लौकिक दुनिया के रहने वाले भी है ना, याद करना पड़ता है ना, तो मुश्किल से लौकिक याद आता है। तो ये है इस बेहद के रूहानी जादुई स्थान का जादू। और सब कितने भाग्यशाली हो जो ऐसी भूमि पर सेवा करने का मौका मिला है, है ना? तो क्या करना चाहिए, इसके एक एक पल को सफल करना है। हम तो ये महसूस कर रहे हैं कि इस स्थान का एक एक कोना, एक एक कण में जैसे बाप दादा की याद समाई हुई है, ऐसे लग रहा है कि चारों तरफ बाप दादा हमारे आस पास ही चल रहे हैं। हो रहा है ऐसा अनुभव? योग करना नहीं पड़ता है, लेकिन योगी जीवन का अनुभव हो रहा है। कारण क्या है? तपस्या के वाइब्रेशंस। तो जितने दिन हम यहां पर हैं, उतने दिन हमें अपनी बैटरी को ऐसा भर लेना है बाबा की याद से, बेहद सेवा के भाग्य से, तपस्या से, कि जब फिर से हम अपने लौकिक स्थान पर जाए तो क्या करें जाकर, वहां लौकिक स्थान को भी हम मधुबन बना दें। हो सकता है? बाबा ने कहा है बच्चे, आने वाला समय अब तो आ गया है, अब कोई और समय की वेट करने की जरूरत नहीं है, अब हम सभी वो समय के अंदर पहुंच गए हैं जिस समय में बाबा का एक एक बच्चा बाप को प्रत्यक्ष करेगा ना, और एक एक बाबा के बच्चे का स्थान तीर्थ स्थान बन जाएगा, एस्लम बन जाएगा। तो अब चेक करना है, क्या मैंने स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाया है? कितना? जो अभी अचानक भक्तों की लाइन लग जाए, लगने में देरी तो नहीं है ना? अचानक के समय को हम सब ने देख लिया, कोरोना काल ने हम सबको बहुत अनुभवी बना दिया। वैसे कोई भी परिस्थिति अचानक आ सकती है और सारे दृश्य बदल जाएंगे, उसमें देरी नहीं लगेगी। लेकिन ऐसे दृश्य के लिए क्या मैं तैयार हूं? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि परिस्थिति बातें सिर्फ दुनिया वालों के सामने आने वाली है, ऐसा तो नहीं है ना? हम सभी के सामने भी बातें और परिस्थितियां उतनी ही आएगी। स्वभाव संस्कारों का टक्कर, क्योंकि आखिरी समय है ना, हिसाब किताब चुक तो करने हैं। तो जिस स्थान पर आप जिसके साथ रहते होंगे या जिसके संबंध संपर्क में आप होंगे, उनके साथ संस्कारों का क्या कहेंगे, हलचल होनी है ना, टकराव नहीं कहेंगे, क्योंकि हम थोड़ी टकराएंगे। आमने सामने टकराए तो टकराव, हमें तो अभी टकराना नहीं है। हलचल आएगी, एक तरफ से आएगी, लेकिन मेरे तरफ से टक्कर ना हो। आमने सामने गाड़ी आ जाए तो एक को सीधा टर्न ले लेना है, रास्ता बदल लेना है। तो स्वयं को मुझे इतना तैयार करना पड़ेगा, और ये समय मिला है। चाहे आप यहां 10 दिन हो, 4 दिन हो, 2 दिन हो, 1 दिन हो या 5 दिन हो, ये तो पावर हाउस है। और ये पावर हाउस में आने के बाद हमें अपने स्वयं का रियलाइजेशन होता है, महसूसता होती है कि मैं कहां हूं। हिस्ट्री हॉल में बैठे हो ना, शांति से हिस्ट्री हॉल में बैठो और बाबा के और यज्ञ के एक एक चित्र को देखते रहो। देखते हो, देखा है, इतने अच्छे वाइब्रेशंस आपको मिलेंगे। बाबा को देखो, जैसे बाबा हमें कहेगा, हे आत्मा तुम कहां हो। बाबा की झोपड़ी में जाए, बाबा के कमरे में जाए, शांति स्थम पर जाए। ये सारे महान तीर्थ इतने से छोटे से एरिया में है। एक एक स्थान पर बैठकर अपने मन को बिल्कुल बाबा के साथ जोड़ दो। बाबा, अब मुझे आत्मा को क्या करना है? ज्यादा सोचो नहीं, हाँ? बाबा टच करेगा, बच्चे तुम्हारे अंदर क्या क्या कमी है, क्योंकि ये शीश महल है ना? शीश महल में जो जैसा है वो देखने में आता है। ये रूहानी शीश महल है, और यहां आकर हर आत्मा को अपना सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं के स्थिति की महसूसता होगी। इसलिए पहला कार्य करना है, यहां मुझे और किसी को नहीं देखना है, ठीक है। एक बाबा को देखना है और आदि रत्नों को देखना है, क्योंकि देखने में भी हमारी एनर्जी जाती है। साथ वाला क्या करता है, ये क्या करता है, नहीं। दूसरा, ऐसे रूहानी वायुमंडल को अपने अंदर भरने के लिए मुझे मौन में रहना पड़ेगा। अगर आपस में बातें की, बातें तो वहां पर भी करते हैं ना, और यहां भी हम बातें करेंगे, तो बाह्य वातावरण हो जाएगा, बाह्य मुक्ता हो जाएगी। तो जिस स्थान पर हम यहां पर हैं, वो स्थान की शक्ति को हम अपने अंदर भर नहीं सकेंगे। इसलिए जितने दिन यहां पर हो, मौन। प्यारे ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने यहां पे कितना तप किया है, और उस साधना के वाइब्रेशंस एक एक कोने से आपको फील होंगे। ऐसे लगेगा कि वतन भी नीचे है और परमधाम भी नीचे है, लगता है ऐसे। ऊपर जाने की जरूरत नहीं महसूस होगी, हमें तो ऐसे लग रहा है। जब हम अपने स्थान पर जाए ना, तब हम सूक्ष्म वतन जाए, परमधाम जाए, लेकिन ये पांडव भवन, ये पांडव पति का और पांडवों का ऐसा किला है जो अपने आप में सूक्ष्म वतन भी है और वो अपने आप में परमधाम भी है। लेकिन ये मुझे तब महसूस होगा जब मैं भी वो स्थिति में रहूं, बिल्कुल आवाज से परे। तो यहां से जाने के बाद आपको ये स्थिति खींचेगी और दिल करेगा नहीं, अब यहां रहते हुए भी मुझे मधुबन में रहना है, ठीक है। ये लक्ष्य रखेंगे सभी, लौकिक स्थान में चाहे कैसी भी बातें हो, कैसा भी माहौल हो, लेकिन मुझे अपनी रूहानियत से उसे बदलना है। तो एक तो एकांत, अंतर्मुक्ता, दोनों बातें चाहिए। एकांत में किसी की कंपनी की जरूरत नहीं है, हाँ, अकेले रहेंगे तो बाबा साथ आएगा, दो साथ है तो भी अकेले रहो तो महसूस होगा कि बाबा मेरे साथ साथ चल रहे हैं। अब ये पुरुषार्थ हमें करना है, हमारी दादियों ने हमें यही सिखाया। आज हम आपसे थोड़ा वो बातें शेयर करेंगे, हैं, जो हमने 3 साल में अनुभव किया। हम सब की प्यारी गुलजार दादी जी अपने पिछले अंतिम कर्मातीत स्थिति के समय में कहां थे? बॉम्बे कैसी नगरी है, हाँ, मायावी नगरी है और आवाज की दुनिया है, जहां रात को भी शांति नहीं है। हाँ, कहते बॉम्बे कभी सोता नहीं है, आधी रात को भी लोग जगते ही रहते हैं। और ऐसी नगरी में रहकर प्यारी दादी जी ने क्या बना दिया, एक ऐसा स्थान बना दिया, पूरा वतन धरती पे ला दिया। हमने 3 साल दादी जी को बहुत करीबी से देखा, साथ साथ रह के। कभी कभी हम सोचा करते थे जब हम यज्ञ की बातें सुनते थे सभी से कि साकार ब्रह्मा बाबा जब अपने अंतिम समय में पिछले 3 साल में कहीं बाहर नहीं गए हैं, यही स्थान पर रहके बाबा के साथ साइलेंस में रहते थे। सुना है ना हम सभी ने, ऐसा ही पुरुषार्थ दादी जी ने किया। 3 साल में, पिछले 1.5 साल, वैसे तो 3 साल में दादी साइलेंस में थी, लेकिन कभी कभी किसी को मिल लिया करती थी, थोड़ा बहुत बोलती थी, लेकिन लॉकडाउन हुआ तो जैसे मास्टर प्रकृति पति ने प्रकृति को भी विजय कर लिया और प्रकृति दासी बन गई, लॉकडाउन कर लिया, तो वैसे भी कोई मिलने आ नहीं सका दादी को। और दादी जी ने एक ही फ्लैट में, छोटा सा स्थान है ये बेहद का घर, और उसके हिसाब से हम कहेंगे वो छोटी सी कुटिया, जैसे यहां साकार बाबा की कुटिया है ना, वो दादी की एक कुटिया थी, एक कमरा था और दूसरा बार दूसरा कमरा था। बस ये 2 ही स्थान पर दादी जी ने अपने संपूर्णता को पा लिया, ऐसी तपस्या की, दादी संपूर्ण मौन में चली गई, कंप्लीट मौन। हम बहने जाती थी, थोड़ा बहुत दादी जी से बातें करे, दादी जी को कुछ दिखाए, कुछ करे, लेकिन महसूस होता था कि दादी देखते हुए भी कुछ और देख रही है, सुनते हुए भी नहीं सुन रही है, बिल्कुल बाबा की याद में। कभी कभी दादी को पूछते थे तो दादी पुरुषार्थ की बातें एक लाइन में, आधी लाइन में या कुछ एक शब्दों में बता देती थी। तो हम ये सोचते थे कि बाबा का ये रथ, ऑलरेडी इतनी पवित्र आत्मा, उन्होंने भी संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए स्वयं को सब बातों से ठिठेज कर दिया, और उसी हालातों में प्यारी जानकी दादी जी अव्यक्त हुए और दादी जी यज्ञ के कारोबार को संभालने की निमित्त बनी। जब दादी जी को ये बताया गया कि दादी आप तो अभी विश्वविद्यालय के चीफ बने हो, आपको संभालना है, तो दादी जी ने कहा अरे वो तो बाबा का यज्ञ है और बाबा संभालेगा। वहां से भी दादी ने टेस्ट, और फिर दादी जी ने यज्ञ को कैसे संभाला, कैसे संभाला, यह हम सभी के सामने दादी जी ने एक एग्जाम्पल रखा कि अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त रूप में भी कारोबार चल सकता है। सभी बाबा मिलन करने के लिए मधुबन में आते थे ना, कितना अच्छा अनुभव करके जाते थे। तो पता है वहां दादी जी क्या करते थे, जब बाबा मिलन होता था तो वहां दादी जी के कमरे में टीवी होता था और सारा लाइव दादी जी देखती थी, सभी बच्चों को देखती थी, बाप दादा को देखती थी, और सबको वहां बैठे बैठे सकाश देती थी, और वो दृश्य हम देखते थे दूर बैठ के। तो हमें क्या महसूस होता था कि टीवी में बाप दादा दिखाई दे रहे थे और वहां दादी जी का चेहरा, हमें दोनों में कोई अंतर नजर नहीं आता था। इसका अर्थ क्या हुआ, दादी जी वहां बैठे हुए सभी को यहां सकाश देकर बाप दादा से मिलन करवा रही थी। ये थी दादी जी की सेवा, सूक्ष्म सेवा। और अभी क्या है, अभी भी बाप दादा का मिलन आएगा, अब क्या करेंगी दादी जी? अब तो वतन में संपूर्ण फरिश्ता स्थिति में है दादी जी, तो अब वो वतन से सबको बाप दादा के मिलन की अनुभूति कराएगी। तो बाबा का ये रथ कैसे तपस्या की, खाने पीने में भी बिल्कुल हम कहेंगे कि कोई प्रकार का स्वाद आकर्षण नहीं था। हमने तो 3.5 साल में देखा दादी जी ने कोई वैरायटी खाना नहीं खाया, वही सिंपल खाना होता था जो डॉक्टर की डाइट थी, बस वही। तो रसेंद्रियों से भी दादी जी परे थी, कर्मेंद्रियों के सारे आकर्षण से परे थी, और वो एक कमरे में अपने आप को रख दिया था और तपस्या की। तो क्या प्रेरणा मिली हमें? हमें भी ऐसे तपस्या करनी है। तपस्या के लिए मुझे अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर संपूर्ण कंट्रोल लाना पड़ेगा। और दादी जी जिससे भी बातें करती थी तो दादी के बोल वो महावाक्य होते थे, इतने मधुर, इतने मीठे बोल। तो सबसे पहली धारणा, क्योंकि हमें रिटर्न जर्नी के लिए स्वयं को रेडी करना है, दादी जी ने जाकर के वतन में बैठ करके ये दरवाजा खोल दिया, खोला ना। दादी जी के जाने के बाद बराबर 1 मास के बाद कितनी ब्राह्मण आत्माएं गई, अभी भी 4 ही है। अचानक किसी का भी बुलावा आ सकता है, और दादी जी अभी भी फरिश्ता स्थिति में हमारे साथ साथ है। वो तब भी महसूस हो रहा था जब दादी जी तपस्या में थी कि दादी जी हम सब ब्राह्मणों को तैयार कराने के लिए इस रथ में बैठे हैं। और जैसे दादी जी अव्यक्त हुए, हल चले ब्राह्मणों में भी। उसके पहले कोरोना में इतने ब्राह्मण नहीं गए थे बाबा के पास। तो अब वो समय है कि जो मुझे करना है अभी ही करना है। अभी हमें डबल इंजन की मदद है। कई बाबा के मैसेजेस में हम सभी ने सुना कि ब्रह्मा बाबा तो वतन से बच्चों को मदद कर ही रहे थे, लेकिन अब 2 फरिश्ते हो गए हैं वतन में। तो जब डबल इंजन होती है तो गाड़ी बहुत फास्ट जाती है, है ना? तो बहुत फास्ट समय जा रहा है। बाबा के अभी के जितने मैसेजेस आते हैं, हरेक में बाप दादा यही कहते, बच्चे समय समीपता के ओर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन बच्चों को महसूसता अभी तक भी नहीं आ रही है, है ना? सुन रहे हो ना सभी? संपूर्णता को पाने में अभी भी बच्चे अलबेलेपन में सोए हैं। और उसमें अभी 11 सितंबर के मैसेज में तो गुलजार दादी जी ने क्या कहा, किसने सुना है संदेश? क्योंकि 11 तारीख को दादी जी ने अव्यक्त बने ना, तो हर 11 तारीख को भोग लगता है। तो 11 सितंबर को जो भोग लगा उसमें संदेशी ने पूछा, दादी आपको कुछ संदेश देना है बच्चों को? तो दादी ने क्या कहा, नहीं सुना है? दादी जी ने कहा कि दादी जी और बाप दादा देख रहे हैं कि आजकल दुनिया वालों के साथ साथ ब्राह्मण बच्चों के हाथ में भी एक छोटा सा खिलौना है और वो खिलौने से खेलते रहते हैं। कौन सा खिलौना? फिर दादी जी ने कहा, बाबा ने भी कहा कि देखो दादियों ने भी यूज किया ये खिलौना, लेकिन उसके वश नहीं हुए, सिर्फ सेवा के लिए। तो बच्चों को कहना, जितना शक्ति भरने के लिए, उन्नति के लिए जरूरी है, उतना ही खिलौने को यूज करो, बाकी नहीं। ये फाइनल इशारा मिला है ना, खिलौना सबके पास। और माया कैसी चतुर है पता है? अब बड़े बड़े विघ्न नहीं लाती, क्योंकि पता है कि ब्राह्मण बच्चे अलर्ट हो जाएंगे। अब माया को सिर्फ इतना काम करना है, हमारी मन और बुद्धि को बिजी करना है बस। विकर्म नहीं कराएगी लेकिन बिजी कर देगी, ताकि हमारी बुद्धि बाबा में न लगे और मोबाइल में बिजी हो जाए। वे क्या कर रहे थे? कुछ नहीं देख रहे थे, कहां क्या चल रहा है, कौन से सेंटर पे क्या प्रोग्राम हो रहा है, कौन कैसे क्लास कराते हैं, ना अच्छा तो लगता है ना। लेकिन ये भी माया का अंतिम शस्त्र है। इसके बाद और कोई शस्त्र चलाने की जरूरत नहीं है माया को, है ना? सभी बिजी हो गए। कभी कभी देखती हूं मधुबन में भी, तो बाबा का और दादी का ये संदेश, इस पर चिंतन करना कि अब जो समय है वो ज्यादा सुनने का नहीं है, देखने का नहीं है, लेकिन स्वरूप बनने का है। यज्ञ के शुरुआत में 14 साल की तपस्या कराई साकार बाबा ने। तब तो इतना ज्ञान भी नहीं था, सिर्फ आत्मा और अंगुष्ठाकार बाबा बस। लेकिन उस आत्मा के पाठ को इतना पक्का किया, इतना कराया कि उसी पाठ को पक्का करते करते ध्यान में चले जाते थे, बाबा की याद में खोए रहते थे, और दादियां तैयार हो गई। अब आदि तो अंत, अब हमें भी वो ही करना है, सब कुछ होते हुए निराधार। साकार बाबा ने इतना स्वयं को अंतर्मुखी बनाया, प्यारी दादियों ने स्वयं को इतना अंतर्मुखी बना दिया, इसी दुनिया में रहकर इसी साधनों के बीच में सारी दादियां थी ना, हम भी सभी के बीच में है। अब इन सब से मुझे डिटेच रहना पड़ेगा। और बड़ी बड़ी तपस्या भले नहीं करें हम, हैं भल घंटों घंटों हम नहीं बैठ सकते, कोई बात नहीं, हम सिंपल सिंपल पुरुषार्थ को अपना लें। जो बाबा ने अब कहा, बच्चे आपस में ब्राह्मणों को बड़ा प्यार से रहना है, बहुत सिंपल पुरुषार्थ, लौकिक या अलौकिक, सबके साथ मेरा व्यवहार इतना प्यार भरा हो, हम एक दूसरे को इतना सहयोग दे कि वो आत्मा मुझे दुआ दे। ठीक है, इसमें सहन शक्ति भी आ जाएगी, इसमें समाना पड़ेगा, इसमें स्वयं को एडजस्ट करना पड़ेगा। दादियों ने बहुत किया है, ऐसे नहीं, हमने देखा दादियों को बहुत करीबी से। सहन शक्ति की चरम सीमाएं सभी दादियां रही। शरीर की बीमारियां, आज हमें थोड़ा सा दर्द होता है, है ना, ऑपरेशन हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो अवस्था क्या होती है। और दादियों ने तो बड़ी बड़ी बीमारियां, एक नहीं अनेक बीमारियों को अपने साथ रखा, पर भी बाबा की याद में मगन। क्यों? क्योंकि दादियों ने अनेकों की दुआएं और आशीर्वाद ली है। तो हम गृहस्थ में रहते हैं, लौकिक अलौकिक हरेक के साथ इतना प्यार भरा व्यवहार, एक दूसरे के प्रति इतना शुभ भाव, इतनी सहयोग की भावना हो कि हमें सब दुआ दे। बाबा ने कहा है कि बच्चे, मंजिल पर पहुंचने के लिए रास्ता तो बहुत लंबा है, इसलिए शॉर्टकट रास्ते अपनाने हैं। शॉर्टकट रास्ते कौन से हैं? फिर बाबा ने कहा, दुआएं देना और दुआ लेना, ये रॉकेट है। कितना फास्ट जाता है रॉकेट? दुआएं हमें रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ा देगी। इसलिए एक लक्ष्य रखो, मुझे सब की दुआएं लेनी है, सबको सुख देना है, बस। बल मुझे सहन करना पड़े कर लूंगी, समाना पड़े समा लेंगे, लेकिन साथ वाली आत्मा को मुझे सुख देना है। योग स्वतः लग जाएगा, नहीं तो क्या होता है, छोटी छोटी बातें हमारे योग को तोड़ देती है ना। आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ हुआ, रात को किसी से थोड़ी सी अनबनी हो गई, योग हमारा टूट जाता है। सहन कर लेना है, लेकिन मुख से कोई भी ऐसे शब्द मुझे नहीं निकालने हैं जो सामने वाली आत्मा को दुख दे। कोई ऐसे शब्द नहीं निकालने हैं जो सामने वाली आत्मा के व्यर्थ संकल्प चलाए। दादियों ने ये किया, कोई की गलती भी होती थी तो कभी भी सीधा नहीं बोला कि यह आपकी गलती है। पहले तो उसको बहुत प्यार से उसकी विशेषता का वर्णन करके फिर सावधानी दी। ये धारणा, यही छोटी छोटी धारणाएं मेरे योग को शक्तिशाली बना देगी। तीसरी धारणा, हमें इस तन को भी अच्छी तरह से संभालना है, क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तो योग भी लगेगा। शरीर स्वस्थ कैसे होगा, कैसे होगा? दिनचर्या ठीक, एक्सरसाइज, शरीर के लिए एक्सरसाइज भी जरूरी है, दिनचर्या भी जरूरी है, सेवा भी जरूरी है, योग भी जरूरी है, और सही खान पान। देवताएं क्या खाएंगे, कैसा खाएंगे, कभी सोचा है देवताओं का भोजन कैसा होगा? हाँ जी, अच्छा, सात्विक में क्या होगा? नेचुरल, जो मसाले हम भी डालते हैं, तल के टेस्टी बना के जो खाना खाते ऐसा देवताएं नहीं खाएंगे। सात्विक हल्का भोजन, विज्ञान के इस सिद्धांत को सबको जानना है कि हमारा शरीर चलने के लिए ज्यादा खुराक की जरूरत नहीं है। शरीर पांच तत्वों से बना है ना, तो उसको नेचुरल पांच तत्व ही अच्छी तरह चलाएंगे, बाकी 10% भोजन की जरूरत है। लेट इट साइंस, हम कितने परसेंट भोजन खाते हैं? पेट भर के, है ना? फिर बेचारा शरीर उसे डाइजेस्ट करने में, हजम करने में अपनी सारी शक्ति लगा देता है। फिर कोई शक्ति बचती नहीं है बीमारी को दूर करने की, इसलिए बीमारियां बढ़ती है। इसलिए लाइट खाना खाना है, कम खाना है। जितना हो सके थोड़ा कच्चा भी खाओ, सलाद खाओ, फ्रूट्स मिलता है, फल भी खाओ। नेचर ने जो हमारे लिए नाश्ता बनाया है ना, वो नाश्ता कभी कभी कर लिया करो। इधर नहीं, घर पे जाने के बाद अगर हो सके तो दो टाइम पका हुआ खाना खाओ। ये हम अनेकों के अनुभव के आधार से आपको कह रहे हैं और हमारे अनुभव के आधार से भी कह रहे हैं। जितना पका हुआ खाना कम खाएंगे बीमारियां कम होगी। अगर सुबह का नाश्ता फलों का हो जाए, कच्ची चीजें खा लो, हल्का सा खा लो, फिर दो टाइम खाओ सलाद खाके, काफी बीमारियों से हम बच जाएंगे। ठीक है, ज्यादा मिठाई नहीं, मीठा बोलना है, दिल खुश मिठाई खानी है, ज्यादा मिठाई नहीं। तो शरीर को संभालने के लिए, शरीर को कैसे मशीन को चलाना है उसका ज्ञान होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात, इजी बात आपको बता दूं, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे अगर भोजन बाबा की याद में खाया जाए, गिट्टी गिट्टी बाबा की याद में खाएंगे तो वो भोजन कभी भी नुकसान नहीं करेगा। भगवान नुवाच। दूसरा, वो भोजन दवाई का काम करेगा, लेकिन कब? क्योंकि जब हम बाबा की याद में गिट्टी गिट्टी खाते हैं, प्रयोग करके देखना, आप अनासक्त हो जाएंगे। बाबा की याद में खाएंगे ना, तो जितना आप चबाते थे ना, उनसे ज्यादा आप चबाएंगे। और जितना भोजन को चबा चबा के खाएंगे तो वैसे भी वो दवाई का काम करेगा, क्योंकि सलाइवा ज्यादा निकलेगी, वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा और बाबा की ताकत भी मिलेगी। तो ये तो कर सकते हैं ना। हमने दादियों को देखा, जानकी दादी को भी देखा, गुलजार दादी जी को भी देखा, भोजन एकांत में करते थे और बिल्कुल बाबा की याद में। इसलिए दादियां अकेले अकेले भोजन सेंटर पे भी आते थे साइलेंस में। तो बाबा की एक एक श्रीमत में गहरा विज्ञान है। दादियों के पास और कोई अभी जितना मेडिकल साइंस कोई नॉलेज थोड़ी था, फिर भी कैसे नंबर आगे ले लिया? बाबा की श्रीमत का पूरा पालन किया। तो हम ये कर सकते हैं ना, भोजन बनाना भी बाबा की याद में, खाना भी बाबा की याद में। वो ताकत देगा, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। और दूसरा, शरीर के लिए जरूरी है नींद। थोड़े से रेस्ट में भी शरीर को आराम मिल जाए और हम तपस्या कर सके। जब हम मन से बिल्कुल हल्के रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, अपने कर्मों पर अटेंशन रखेंगे, रात को सोने से पहले चार्ट बाबा को देख करके बाबा की याद में सो जाएंगे। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है कि मम्मा और बाबा ने ज्यादा से ज्यादा योग का चार्ट अपनी नींद के समय में कवर किया है। इसका अर्थ क्या हुआ? योग निंद्रा थी। शक्तिशाली बाबा की याद में आप सो जाओ तो वैसे भी विज्ञान कहता है कि जिस संकल्प के द्वारा, जो लास्ट आपका संकल्प है, जो लेकर के आप सोने में जा रहे हो, नींद में जा रहे हो, पूरा आपका अंतर मन, सबकॉन्शियस मन उसी पे काम करेगा। अब आप गहरे योग की स्थिति में सो गए तो आपकी नींद योगी योग में ही काउंट हो जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा चार्ट लिखो और बाबा से बातें करते करते बाबा की याद में सो जाओ, है ना? बहुत पावरफुल बात है, लेकिन इतनी इजी नहीं है। सोने से पहले ये लक्ष्य रखो, बाबा को याद करते करते। इसलिए बाबा ने कई मुरलियों में कहा, बच्चे सोने से पहले स्वदर्शन चक्र घुमाते घुमाते सो जाओ, बस आपकी नींद सतो प्रधान नींद हो जाएगी। कम समय में शरीर को आराम मिल जाएगा, अमृत वेले आंखें खुल जाएगी। ये प्रयोग करना है। और एक महत्वपूर्ण बात जो हमने अनुभव की, दादी जी जब थी गामदेवी में तो दादी की स्थिति बिल्कुल अव्यक्त थी। 3.5 साल बीमारियों का इलाज भी होता था, लेकिन दादी की स्थिति इतनी पावरफुल थी। तो उसी समय हमने अव्यक्त मुरलियों का स्टडी चालू किया। वैसे तो हम सब पढ़ते हैं, लेकिन दादी थी तो 69 से लेकर हमने फिर से एक बार मुरलियों का रिवीजन शुरू किया। उससे ये फायदा हुआ हमें, क्योंकि 69 की शुरुआत की 3-4 साल की मुरलियां बहुत ज्यादा शक्ति पावरफुल है, क्योंकि बाबा अव्यक्त हुए थे तो शिव बाबा ने सारे पुरुषार्थ को क्लियर किया है। ब्रह्मा बाबा ने कैसे पुरुषार्थ किया, कैसे अव्यक्त बने, बच्चों को क्या करना है। तो हम अव्यक्त मुरली पढ़ते थे और फिर हम दादी जी के सामने जाते थे, तो हम दादी जी की स्थिति को बहुत गहराई से अनुभव कर सकते थे, समझ सकते थे कि सचमुच दादी जी का क्या पुरुषार्थ चल रहा है। तो हमें इतना अच्छा लगता था और ऐसे लग रहा था कि जैसे दादी भी वही पुरुषार्थ कर रही है जो बाबा ने अव्यक्त मूल्यों में कहा है। हम पढ़ते थे वो पुरुषार्थ को और दादी जी वो पुरुषार्थ करती थी, लेकिन उससे हमें इतनी ताकत मिलती थी, इतनी शक्ति कि ज्ञान सागर क्या है, ज्ञान का खजाना क्या है, वो सचमुच हमने गहराई से अनुभव किया। तो आज दिन तक भी रोज हम एक अव्यक्त मुरली जरूर पढ़ते हैं। तब 69 से शुरू हुई थी, अभी हम 98 की मुरली तक पहुंच गए। लेकिन रोज एक अव्यक्त मुरली जरूर पढ़ना है। पढ़ते हो आप सभी? पढ़ते हो? अभी ये प्रयोग करके देखना रोज। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो अमृत वेले के योग के बाद पढ़ो। ऐसा ज्ञान का खजाना भरा है। हम तो कभी कभी सबको ये कहते हैं कि ये हमारा पाठ्यक्रम है, सिलेबस बोलते हैं। अब जिस यूनिवर्सिटी में हम आए हैं ना, तो 69 से लेकर 2017 तक की अव्यक्त मूल्यां हमारा पाठ्यक्रम है। पढ़ना पड़ेगा ना। क्वेश्चन कोई भी साल की अव्यक्त मुरली से आ जाएगा तो क्या करेंगे? इसलिए सब ये लक्ष्य रखो, पढ़ना ही है। इससे बहुत ताकत मिलेगी। हमें पुरुषार्थ में क्या क्या करना है, आज दिन भर में जो बात मेरे सामने आई होगी या तो आने वाली होगी, आपको रोज की उस मुरली से मिल जाएगी। और इम्पोर्टेंट बात, रोज की साकार मुरली। सब सुनते हैं ना। अब मुरली हम सभी कितने सालों से सुन रहे हैं, अब मुरली सुनने का तरीका थोड़ा परिवर्तन करना है। हम खुद भी अभ्यास करते हैं और करवाते हैं। साकार मुरली सुनने की विधि बाबा ने बताई है, कंप्लीट आत्मिक स्थिति में स्थित होकर एकाग्रता से, संपूर्ण एकाग्रता से। बाबा ने कहा कि मुरली सुनते सुनते तीनों लोकों का सैर हो जाए, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी होता रहे और मनसा सेवा भी होती रहे। ये विधि बाबा ने बताई है। तो जो जो आप साकार मुरली की बातें सुनते हो, साथ साथ आप उनका अनुभव करते जाओ, ड्रिल करते जाओ। बाबा परम धाम को याद करते हैं, साथ साथ परम धाम जाओ। नई दुनिया को याद करते, नई दुनिया में चले जाओ। सूक्ष्म वतन में याद करते हैं, वतन में चले जाओ। बाबा कहते बच्चे आत्माओं को मैं पढ़ाता हूं, आत्मा बन जाओ। तो ये ड्रिल हो गई। पूर्ण एकाग्रता से साकार मुरली पढ़े। तो बाबा ने कहा है कि अगर संपूर्ण एकाग्रता से मुरली सुनेंगे तो समय पर वो पॉइंट बुद्धि में इमर्ज हो जाएगी। और रोज की मुरली से 4 से 5 बातें नोट करें, उसको बार बार रिवाइज करें और वरदान का अभ्यास करें। बड़ा मजा आएगा और पुरुषार्थ की गति हमारी तीव्र हो जाएगी। ठीक है, बस ये छोटी छोटी बातों पर हम अटेंशन रखें और बाबा को साथ रखें। जैसे जैसे हमारे पुण्य कर्मों का खाता बढ़ता जाएगा, हमारी वाणी मधुर होगी, मन में हरेक के प्रति अच्छा ही सोचना है। ये पक्का कर ले, कोई कैसी भी आत्मा हो, शुभ भाव, उससे हमें इतनी ताकत मिलेगी। अभी लास्ट संदेश में भी बाबा ने कहा था कि बच्चे अभी अभ्यास करना है, हम सब एक परिवार के हैं, आपस में हर एक को दुआएं दो, ब्लेसिंग्स दो, स्नेह दो और शक्ति दो, तब संगठन से बाप प्रत्यक्ष होगा। तो इस पर मेहनत करें, मेहनत तो लगेगी। हाँ, कोई हमारे साथ ठीक व्यवहार न करे, कैसे उसको शुभ भावना देंगे? देनी है। यहां ही ज्ञान का खजाना काम आएगा। अपने मन को बाबा की बातें देते देते समझाओ, हे मन, जैसे साकार बाबा ने और दादियों ने सबको दुआएं दी, तुम्हें भी दुआ देना है। बस ऐसे अपने से मेहनत करें। तो बाबा की वरदानी भूमि पर हम सब बैठे हैं, यहाँ आने का सबको भाग्य मिला है, तो ये वरदान लेकर जाए। तो अब एकांत, एकाग्रता और अंतर्मुखता, बस ये तीन गुणों के द्वारा जितने दिन यहाँ पर है, सारी शक्तियों को अपने अंदर भर ले, और यहाँ से फिर जब हम लौकिक स्थान पर जाए तो ये अनुभव को ऐसा साथ में ले जाए कि वो लौकिक स्थान भी हमारा मधुबन बन जाए। तो करेंगे सब संकल्प, हमारा एक एक स्थान बाबा का महायज्ञ बन जाए, ताकि आने वाले समय में प्रत्यक्षता में हम सहयोगी बन सके। ओम शांति।